नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की नवनियुक्त अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के साथ आज फोन पर बात की। प्रधानमंत्री कार्की ने श्री मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं दी। श्रीमती कार्की ने भारत नेपाल के सदियों पुराने मित्रतापूर्ण संबंधों को याद किया और प्रधानमंत्री मोदी को नेपाल के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम से अवगत कराया। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री कार्की को नेपाल की प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी और नेपाल को भारत का निरंतर सहयोग देने का वचन दिया। प्रधानमंत्री ने श्रीमती कार्की और नेपाल के लोगों को कल उनके राष्ट्रीय दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 11 वर्षों में बिहार को विकास परियोजनाओं और कार्यों के लिए 14,85,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी है। बेगूसराय में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक में उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में बिहार को केवल 2,80,000 करोड़ रुपए मिले थे। श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बिहार यात्रा का उद्देश्य वोट बैंक की राजनीति है।
यात्रा का विषय बिहार में अच्छी शिक्षा लाना नहीं था, यात्रा का विषय रोजगारी नहीं था, यात्रा का विषय बिहार में 24 घंटा बिजली नहीं था, यात्रा का विषय हर गांव हर टोले में रोड पहुंचाना नहीं था, यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आईपी सारथी चैटबॉट और एआई एमएल आधारित उन्नत इमेज सर्च तकनीक शुरू करने का काम पूरा हो गया है। श्री गोयल ने कहा कि ये नवाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के बौद्धिक संपदा परिदृश्य को बदलकर प्रत्येक स्टार्टअप और एमएसएमई के लिए तेज, निष्पक्ष तथा भविष्य के लिए तैयार आईपी पहुंच सुनिश्चित करने के विजन के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि ये प्लेटफॉर्म लाखों उपयोगकर्ताओं को लाभान्वित करते हुए देश के नवाचार इकोसिस्टम को और मजबूत कर रहा है, कि विकसित भारत बनने की दिशा में महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वैश्विक मंच पर भारत का कद बढ़ रहा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन में श्री सिंह ने कहा कि प्रयास और कार्य राष्ट्रहित के अनुरूप होंगे तो वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। रक्षा मंत्री ने भारतीय रक्षा संपदा सेवा के अधिकारियों को भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप छावनी परिषदों को स्मार्ट, हरित और टिकाऊ शहरी व्यवस्था के रूप में विकसित करने का प्रयास करने का आह्वान किया। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सरकार लोगों को अवैध और नकली व्यापार से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मेघवाल ने आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि हाल ही में किए गए जीएसटी सुधारों से लोगों को काफी राहत मिली है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 320 अंक बढ़कर 83,014 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 93 अंक की बढ़त के साथ 25,424 पर जा पहुंचा। सरकार ने BSNL के नाम से जारी एक कथित नोटिस का खंडन किया है, जिसमें कहा गया था कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों के सिम KYC को निलंबित कर दिया है और उनके सिम कार्ड 24 घंटे के भीतर ब्लॉक कर दिए जाएंगे। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने इस अधिसूचना को फर्जी बताया है और लोगों को आगाह किया है कि वे ऐसे नोटिसों से सावधान रहें। टोक्यो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में सचिन यादव चौथे और नीरज चोपड़ा आठवें स्थान पर रहे। फाइनल में आज सचिन ने करियर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो 86.27 मीटर का किया। नीरज ने 84.03 मीटर का थ्रो फेंका। त्रिनिदाद और टोबैगो के कैशोन वॉलकॉट ने स्वर्ण, ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने रजत और अमरीका के कर्टिस थॉम्पसन ने कांस्य पदक जीता है। पीवी सिंधु चाइना मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने थाईलैंड की पॉनपावी चोचुवांग को आसानी से हराया। वहीं पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। राजधानी दिल्ली के अधिकतर इलाकों में आज बादल छाए रहे। आज का अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में बादल छाए रहने की संभावना है और कहीं कहीं हल्की बारिश होने का भी अनुमान है। कल का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।